તારીખ 15/3/1998 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 449 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 626
શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત तीसरा पैराग्राफ चलता है। कि आत्मकल्याण के विषय में अवरोध करने वाले पेज 379 પ્રથમ પેરેગ્રાફ 319 પેજ પર કે કલ્યાણ મેં પ્રતિબંધ રૂપ જો જો કારણ હૈ ઉસકા જીવ કો બાર બાર વિચાર કરના યોગ્ય હૈ અપને આત્મ કલ્યાણ કો રોકને વાલે જો અપને ભાવ હૈ વહી કારણ હૈ બાહ્ય પરિસ્થિતિ આત્મ કલ્યાણ મેં રોકને કે કોઈ कारण रूप नहीं होते। इसलिए हमारे आत्मकल्याण में कोई बाह्य परिस्थिति बाधक है ऐसा कभी अभिप्राय नहीं रखना और कभी ऐसा विचार भी नहीं रखना, कभी ऐसे भाव नहीं रखना। हमारे ही जो अनुचित परिणाम है, गलत परिणाम है, वही हमारे आत्मकल्याण में नुकसान करता है, बाधक करता है, बाधा पहुंचाता है। ऐसे हमारे परिणाम पर बार बार विचार करना योग्य है और उन कारणों का, उन परिणामों का विचार करके उसके दूर करना भी योग्य है और विचार भी यही है तो उसे करना चाहिए। कैसे परिणाम हमारे मिट जाए, कैसे मिटे। इस प्रकार के मार्ग का, मार्ग मैंने उपाय, इस ऐसे उपाय का अनुसरण किए बिना कल्याण की प्राप्ति नहीं होती, आत्मकल्याण की प्राप्ति नहीं होगी। अब कहते हैं कि ये तीन प्रकार के परिणाम जो होते हैं वो कैसे हैं, तो होते हैं कि मल, विक्षेप और अज्ञान। मलिनता जो है वही जीव को सही बात को समझने नहीं देती। अज्ञान है वो विपर्यास करता है और विक्षेप है वो क्षोभ उत्पन्न करके, डिस्टर्ब उत्पन्न करके परेशान करता है। ये तीन प्रकार के जो परिणाम हैं शास्त्र भाषा में उनको मिथ्यात्व, रागादि विक्षेप मैंने आकुलता रूप चारित्र आचरण और अज्ञान मैंने विपरीत समझ, ऐसे मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र शास्त्र भाषा में कहते हैं। यहाँ घरेलू भाषा का प्रयोग किया है। ये जीव के अनादि के तीन दोष हैं, तीन प्रकार के जो दोष हैं वो सभी संसारी जीव को अनादि से होते हैं, तो उसको मिटाने का उपाय दिखाते हैं। कि ज्ञानी पुरुषों के वचनों की प्राप्ति होने पर उसका यथा योग्य विचार होने से अज्ञान की निवृत्ति होती है। तो सबसे पहले क्या किया, सब क्रम से बात करते हैं कि सबसे पहले अज्ञान के विषय में प्रयास करना। तो अज्ञान के विषय में, अज्ञान मिटाने के लिए के जो प्रयास करना है उसमें सबसे पहली बात वो है कि अज्ञान का प्रतिपक्ष ज्ञान है और ज्ञान है तो ज्ञानी पुरुष का ज्ञान है और ज्ञानी पुरुष का ज्ञान ज्ञानी पुरुषों के वचनों से समझ में आता है। इसलिए अज्ञान मिटाने के लिए ज्ञानी पुरुष के वचनों की प्राप्ति होनी जरूरी है। तो ज्ञानी पुरुष के वचनों जो हैं, उन पर स्वाध्याय करना, विचार करना, उसी पे आगे चलना, इनके वचनों को समझने की कोशिश करना कि मेरे अज्ञान के विरुद्ध क्या क्या बात कर रहे हैं। ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान से मेरे अज्ञान के विरुद्ध कौन सी बात कर रहे हैं, उसका विचार करना और अज्ञान, और ऐसे करने से अज्ञान की निवृत्ति होती है। ऐसे अपने परिमन में उन वचनों को लागू करने से अज्ञान की निवृत्ति होती है। उस अज्ञान की संतति बलवान होने से, संतति मैंने उसकी प्रजा, अज्ञान से जन्म लेने वाले जो भी बुरे परिणाम हैं, आत्मा को नुकसान करने वाले दुखदायक परिणाम हैं, दुखदायक भाव हैं, विपरीत भाव हैं, वो अज्ञान से, अज्ञान की संतति है और वो भी बलवान है, बहुत आती है। जैसे हम लोग चर्चा करते हैं तो बात तो समझ में आती है, लेकिन हमारी शिकायत क्या आती है, ऐसे भाव हमारे हो जाते हैं, हमारे भाव वैसे हो जाते हैं, हमारे भाव वैसे हो जाते हैं, क्यों होते हैं? कि अज्ञान की बलवान संतति है, उसको रोक नहीं सकता खुद। ये बलवान होने से उसका रोध होने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको मिटाने के लिए और ज्ञानी पुरुषों के वचनों का यथा योग्य विचार होने के लिए, यथा योग्य विचार मैंने क्या, कि जो बात समझ में आती है वो स्वलक्ष्य से समझ में आए, वो यथा योग्य विचार है। बात तो सबको समझ में आती है, लेकिन स्वलक्ष्य से समझ में आती है तो यथा योग्य विचार होता है उसका, और परलक्ष्य से वो बात समझ में आती है तो उसका विचार यथा योग्य नहीं होता है। समझ में आती है लेकिन इसका आगे का विचार यथा योग्य नहीं होता है। तो स्वलक्ष्य कैसे करना, ये बात आएगी कि अपने आप को उसमें शामिल करना, इन्वॉल्व करना, कि ये जो आत्मा की बात चलती है वो मेरे आत्मा की चलती चलती है, और मेरे लाभ नुकसान के प्रयोजनभूत बात चलती है, मतलब की बात चलती है, और बहुत दरकार से मुझे उस पर विचार करना चाहिए और उसका इलाज करना चाहिए। इस तरह से इसका यथायोग्य विचार होने के लिए, ऐसा होने के लिए क्या चाहिए, मौल और विक्षेप को दूर करना योग्य है। देखो, अज्ञान मिटाने के लिए मौल और विक्षेप को भी हटाना पड़ेगा। तो विक्षेप कैसे होता है, तीव्र कषाय रस से विक्षेप होता है, जिसको कषाय तीव्र होता है, चिकने परिणाम होते हैं क्रोधमान माया लोक का, वो डिस्टर्ब करता है आत्मा को, बैलेंस नहीं रहने देता। तो ज्ञानी पुरुष का वचन का यथा योग्य विचार वो नहीं कर पाएगा, तीव्र कषाय रस वाला जीव और तीव्र मिथ्यात्व वाला जीव भी ज्ञानी पुरुष के वचनों का यथा योग्य विचार नहीं कर पाएगा। दृष्टांत ले लेवे, जैसे आजकल हमारे चर्चा में परिभ्रमण का प्रॉब्लम जो है, जीव को अनंत जन्म मरण होने वाला है, ये तलवार कच्चे धागे से लटकती हुई हमारे सिर पे है, ऐसा विजुअलाइज होना चाहिए। ज्ञानी ऐसे कहते हैं कि अरे जीव, तेरे सिर पे परिभ्रमण की तलवार लटकती है कच्चे धागे से, ये कब नीचे गिरेगी और तेरा परिभ्रमण होता रहेगा, पता नहीं लगेगा। उसको ठीक करो, परिभ्रमण नहीं होगा ऐसा इलाज करो। अब ये समस्या है, चिंतना में आने की, वेदना में आने की होती नहीं, क्या कारण है? ये तो ज्ञानी ज्ञानी पुरुष के वचन है, 195 पत्र में स्पष्ट है, 86 पत्र में स्पष्ट है और 128 में भी स्पष्ट है, पहले 4 पैराग्राफ में। हम चिंतना में नहीं आते, इसका मतलब कि हमारा मिथ्यात्व दर्शन मोह तीव्र होने से ज्ञानी पुरुष के वचनों का यथा योग्य विचार हम कर पाते नहीं है, ये हमारी हालत है। इसलिए दर्शन मोह को भी मंद करना चाहिए और कषाय रस को भी मंद करना चाहिए, और दर्शन मोह मंद होगा तो कषाय रस मंद होगा ही साइमल्टेनियसली, ये बात साथ साथ बनती है। और जब ऐसा बनता है तो ज्ञानी पुरुष के वचनों का यथा योग्य विचार होकर के अज्ञान की निवृत्ति होने का अवसर आता है। देखो बहुत मार्गदर्शन तो इतना सुंदर दिया है कि सरलता, चारे प्रकृति में रस छे, तीव्रता छे, चिकना परिणाम, रस એટલે ચીકણા પરિણામ, લીનતા વાળા પરિણામ। કર્કશર કરવી એ દુર્ગુણ નથી, સાદાઈથી જીવવું એ કોઈ દુર્ગુણ નથી, ઓછા ખર્ચે જીવવું એ કોઈ લોભ કે દુર્ગુણ નથી। લોભની વ્યાખ્યા સમજી લેવી,
યથાસ્થાનમાં
ધનના વ્યયનો અભાવ થવો એનું નામ લોભ છે, બસ જે યથાસ્થાન છે ત્યાં એ પ્રમાણે થવું જોઈએ, વ્યવહારમાં અને ધાર્મિક સ્થળમાં બંને જગ્યાએ, બાકી કઈ લોભ ન ગણાય। કર્કશર અને લોભ વચ્ચે પાતળી ભેદરેખા છે, બહુ પતલી, કોઈ ભી કષાય રસ કી તીવ્રતા હોને સે અશાંતિ, વિક્ષેપ મેને અશાંતિ હોગી હોગી ઓર હોગી હી, ચાહે વો અશાંતિ સમજ મે આયે ચાહે નહીં આયે લેકિન હોગી હી હોગી, યે વૈજ્ઞાનિક પરિસ્થિતિ હૈ પરિણામો કે। ઈચ્છા કા જીતના તીવ્રતા હૈ, ઈચ્છા કી તીવ્રતા હૈ વહી લોભ હૈ, અનુકૂળતા કી ઈચ્છાએં વો ભી લોભ હૈ, ઉસમે જીતને ચીકને પરિણામ ઉતની અશાંતિ હોગી હોગી, જીતની અપેક્ષાવૃત્તિ જ્યાદા હૈ વહી લોભ હૈ, જ્યાદા અપેક્ષાવૃત્તિ મેં પરિણામ તો ડિસ્ટર્બ હોંગે અશાંતિ હોગી હી હોગી, तो उसको दूर करने के लिए, ऐसे दोषों को दूर करने के लिए सरलता सबसे पहली बात लिया है, क्योंकि मल मिटाने का एक ही उपाय है सरलता। असरलता, माया, कपट, ये जो है हठ, जिद वगैरह, ये मल बढ़ाने का कारण है। इससे मलिनता बढ़ेगी और सरलता से मलिनता घटेगी, कम होगी। सबसे पहली बात लिया है, मुमुक्षु को सरलता एक बहुत बड़ा गुण है और असरलता बहुत बड़ा दोष है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए सबसे पहले तीन दोष मिटाने में जो बात किया है, साधन की बात किया है, उसमें सरलता को पहले लिया है। सरलता पर प्राणी का आर्टिकल तो आ चुका है, ये बात सब करीब करीब मुमुक्षु को बहुत प्रयोजन हो तुमने से ही लिखी थी, तो उस पर बहुत थिंकिंग अपना चलना चाहिए। अपने आप को इन्वॉल्व करके उस पर अच्छी तरह विचार होना चाहिए, और वो विचार ऐसा हो, वो विचार का फल सरलता होने में आना चाहिए, तभी तो इसका यथा योग्य विचार किया। अगर हमारे में सरलता नहीं आई तो हमें जो मार्ग की प्राप्ति करनी है, मोक्ष मार्ग के, उसमें बहुत बड़ी आपत्ति आएगी। ये बात है, सबसे पहले कृपालु देव ने सरलता की बात की है। अगर वो विषय विस्मरण में होता हो, सरलता की बात विस्मरण को प्राप्त हो जाती हो, तो बार बार स्वाध्याय में उसको ले लो, अपने स्वाध्याय में ले लो, अपनी चर्चा में ले लो, ये जरूरी है। क्योंकि सरलता और असरलता का सूक्ष्म और स्थूल अनेक भेद है। सूक्ष्म रूप से जो असरलता होती है उसका तो पता ही नहीं चलता है। जैसे कि हमको ये बात समझ में आई है कि जो भी ज्ञानी कहते हैं उसी को अनुसरण करना वही ज्ञानी पुरुष की आज्ञा है, और हम नहीं चलते हैं तो हम आड़े चलते हैं कि नहीं चलते हैं? सीधे नहीं चलते तो आड़े चलते हैं। सूक्ष्म रूप से असरलता तो हो ही जाती है, भले हमारी अयोग्यता वश होती है, लेकिन असरलता हुई कि नहीं, लेकिन पता नहीं चलेगा इसमें असरलता क्या है। इसलिए उस आर्टिकल में एक आखिरी बात लिया था कि अपना उपयोग सरल हो करके अंतर्मुख हो जाए, ये पारमार्थिक सरलता है। पारमार्थिक सरलता वो है कि हमारा उपयोग इधर उधर जाता है, वही इसकी आडोड़ाई है, असरलता है, वो अंतर्मुख हो जाए, वही उपयोग की पारमार्थिक सरलता है। तो वहां सूक्ष्म भी असरलता नहीं होती है, ऐसी बात होती है। उसके भेद प्रभेद तो बहुत है, लेकिन उसका विचार आए तब तो पता चले, विचारना चले उस पर तब तो पता चले, और वो विचारना हमारे परिणामों के मिलान करके चले तब तो बात समझ में आए कि हम कहाँ असरलता करते हैं, कितनी करते हैं, और इससे कितना बड़ा नुकसान है हमको। ये सरलता वाला गुण अनेक प्रकार के दोषों को आने नहीं देता और मिथ्यात को भी मंद करता है। यानी मलिनता को भी घटाता है, ऐसी बात है। सामान्य रूप से जहां जरूरी है बोलना, वहां हमें बोलना चाहिए, और बोलने में बिना जरूरत से ज्यादा बोलना, इतना नहीं बोलना चाहिए। जैसे किसी को ज्यादा बोलने की आदत है तो बिन जरूरी भी बोलते रहेगा, और किसी को कम बोलने की आदत है तो जरूरी है तो भी नहीं बोलता है, दोनों में असरलता होती है। बहुत सी बात है, लेकिन उस पर विचार चले तब तो। ऐसे बहुत विचार करना चाहिए सरलता प्राप्त करने के लिए, और असरलता नहीं होने के लिए बहुत चलना चाहिए। इसलिए कुछ पहलू पर वो आर्टिकल लिखा है, लेकिन एक एक बात को अगर विस्तार से लेते हैं तो पढ़ने में 5 मिनट लगे, विस्तार करेंगे तो घंटा घंटों एक दो घंटा निकल जाए। तो आर्टिकल पर जब स्वाध्याय चलता है तो 2-3 घंटा निकल जाता है, और सीधा पढ़ ले तो 5 मिनट का ही काम है, 20 पॉइंट है और कोई ज्यादा ही नहीं, 5 मिनट में पढ़ सकता है। बात थोड़ी महत्वपूर्ण है सरलता वाली। क्षमा मैंने क्या, गौण कर देना दूसरे के, अपने प्रति के परिणाम जो है उसको गौण कर देना, उसकी मुख्यता नहीं लेना, तभी तो क्षमा आएगी। तो वो विशालता के परिणाम होते हैं, विशाल बुद्धि वाले जो होते हैं उसको ही ऐसा होता है, ये विशालता के सद्गुण में जाता है। कि कुछ भी हो इसमें क्या हो गया, हमको क्या नुकसान हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ कर लिया, कुछ अभिप्राय अच्छा नहीं रखा, क्या फर्क पड़ता है, हमको क्या फर्क पड़ता है, हुआ ही नहीं कुछ ऐसा लेना है, वैसे कुछ हुआ ही नहीं। वरना क्या है, शल्य रह जाएगा, ये तो ऐसा ही है, वो तो ऐसा ही है, वो तो ऐसा ही है, ये शल्य है, एक पूर्वग्रह है, और इसमें तो पॉइजन भरा हुआ है, पूर्वग्रह में तो पॉइजन भरा हुआ है, जहर है वो। हाँ उसमें तो क्या है, कुछ नहीं, कोई भी आ जाए, प्रश्न बना था। सोनगढ़ से जयपुर के जो परिस्थिति बनी उसमें से जो लोग सोनगढ़ कमाना चाहते थे, भी अपना भी एक साधन पूजा भक्ति स्वाध्याय का साधन बनाना चाहिए, तो देवलाली में एक स्थान बनाने का यही कारण एक उत्पन्न हो गया। तो सबसे पहले वहां जिन मंदिर बनाया, और वो जिन मंदिर के शिलान्यास के ईंटें खुद भैंसरे के उस पर ओंकार करने के लिए वो लोग आए, तो खुद भैंसरे के विरोध में थे, बोले कि आप ईंटे पर ओम कर दीजिए, आपका मंगल हस्ताक्षर चाहिए। सरलता से कर दिया, क्या है कि उसकी बोली बुलाने वाले थे और पैसों की जरूरत थी, तो बेंसरे के हाथ से जो ईंटे हैं उसको शिलान्यास में उपयोग लेना है, बोलो इसकी बोली कितनी। ऐसे बेंसरे का तो समाज में तो मान है, समाज में तो मान होता है। इस तरह से पैसे भी इकट्ठे करने का एक मोटिव भी था। मैंने कुछ नहीं देखा, विरोधी है इसका ये उपयोग होगा, सब मालूम तो पड़ता है। बहुत उपयोग तो सूक्ष्म होता है ज्ञानियों का, सब जानते हैं मानते हैं। कुछ लोगों ने कहा भी जैसे कि आप ऐसा कैसे करते हो, ये लोग तो ऐसे हैं वैसे हैं, तो जवाब नहीं देंगे, इसकी कोई चर्चा नहीं करेंगे। कर दिया आपने आज से सरलता। वो लोग अपना मान छोड़ करके तो यहाँ तक आए, कम से कम इसको देखो ना, देखो उसको, इसके गुण को देखो, उसके अवगुण को क्यों देखते हैं, उसके गुण को देखो ना। बात खत्म। बिन्सि तो एक अक्सर भी नहीं बोली, लेकिन अगर देखना है तो वैसे देखना चाहिए। इसका नाम है सरलता। मैंने सभी प्रसंग को, सभी बात को आत्मकल्याण की दिशा में खींच जाना, यही सरलता है। पारमार्थिक और उल्टा लेना वो असरलता है। इस तरह से सरलता होनी चाहिए, और सरलता होगी तो क्षमा आएगी आएगी। क्षमा करने के लिए कोई मुश्किली होगी नहीं। अपने दोष को देखना, ये भी सरलता बिना नहीं होगा। अपने दोष को देखना, निष्पक्ष रूप से देखना और मिटाने के दृष्टिकोण से देखना, और उसमें वो बात भी गर्भित है कि जब अपने दोष को देखना तो दूसरों के दोष को नहीं देखना, ये बात उसमें गर्भित है। दूसरी वो बात भी गर्भित है कि अपने गुणों की मुख्यता नहीं देना और दूसरे के अल्प गुणों को भी मुख्यता देना। ये चार पहलू इसमें गर्भित है अपने दोष देखने में। अपना दोष देखना, देखो कितनी सुंदर बातें जिन मार्ग में है कि अपना दोष देखना, इसका मतलब कि दूसरों का दोष मत नहीं देखना। और अपना जो गुण है उसको गौण करना, उसको दबाना, उसका प्रदर्शन नहीं करना, और दूसरों का अल्प गुण को भी मुख्यता देना, ये एक अपना दोष देखने में ये सब बात, सभी चारों पड़खा पड़खे कोऑर्डिनेट होना चाहिए, तभी तो अपना दोष देखते हैं वो सही रूप से, यथा योग्य रूप से, यथार्थता से देखते हैं, वरना नहीं देखते। जैसे दो तीन दिन पहले एक बात चली थी, फिर से ध्यान खींचता हूँ कि भाई हमको एक बात चली थी, कहीं मुमुक्षुओं को ज्ञानी के वियोग की वेदना आती है। मेहनतानक का तो प्रत्यक्ष दृष्टांत है, कृपालु देव के प्रति उसको इतनी भक्ति है कि उनकी जो वियोग है, इनका सो वियोग है, उसकी वेदना उनको बहुत रहती है। तो इनके पद गाते गाते घंटों भर रोना होता है। वो वियोग की वेदना यथार्थ कब, अब बात रही यथार्थता की, वरना तो राग हो जाएगा समागम का, हमको भी समागम चाहिए, हमको भी समागम चाहिए, हमको भी समागम चाहिए। सुना नहीं क्या? बात तो हिंदी में हो रही है ना, सब तो ठीक है। जैसे हमको समागम का भाव रहता है, हम उसको भावना में ले जाते हैं, ये हमारी भावना है, लेकिन भावना है कि राग है, उसकी भेद रेखा कैसे पता चलेगा, ये हमारा राग है या हमारी भावना है, क्या बात है वास्तव में। तो कोई वियोग के हमको वेदना आती है, इसलिए हमारी भावना है। वो वेदना यथार्थ है कि नहीं है? कि यथार्थ तब है कि वियोग के काल में हम इनकी बातों का अमलीकरण में लग जाए, तब हम वो कहें वो तो करते नहीं, और हमको समागम चाहिए और हम वियोग में रह सकते नहीं, ये सब गड़बड़ है, ये राग है। तो वो तो पता, ज्ञानी को तो सब पता रहता है कि इसको राग है या भावना है, वो तो सब पता रहता है। ये तो अपने आप को चेक करने की बात है कि हमको क्या होता है और हम क्या करते हैं। ऐसा नहीं है कि वियोग में रोना आता है इसलिए वेदना बराबर है, सही है, वियोग तो होगा ही होगा, संयोग वियोग पूर्व कर्म के अधीन है, उसमें तो किसी की नहीं चलती। जो पूर्वकर्म का उदय आता है, संयोग का वियोग होता है, वियोग का संयोग होता है कर्मानुसार। हमको वेदना है वियोग की, तो वियोग के काल में हम इसकी आज्ञा को पालन करने में, अमलीकरण में कितने आए? अगर नहीं आए तो हमारी बात यथार्थ नहीं है। ऐसे हरेक बात का कोऑर्डिनेशन होता है तो इसकी यथार्थता है, वरना दोष देखना, तो ये तो बच्चे लोग भी देख करके बताते हैं, ये भी कहती है कि मेरा परलक्ष हो जाता है, लेकिन इसका कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है कि परलक्ष हुआ तो खेद कितना हुआ, वो खेद ऐसा हुआ कि जिसे फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, हमारी दरकार कितनी रही उस विषय में, कि बार बार यही होता रहता है तो फिर तो क्या है कि यही कैसेट बजेगी हमारे मुंह से, ये होता है वो होता है, ये होता है वो होता है, हमारा से वो हो जाता है, हमारे से वो हो जाता है, हमारे से वो हो जाता है, ये तो कैसेट की तरह बात हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, हमारा दोष हम देखते हैं, तो इस पर हमारा क्या प्रयोग चलता है, हमारा क्या प्रयत्न चलता है, वो बात साथ साथ होनी ही चाहिए, और प्रयत्न होवे और फर्क नहीं होवे ऐसा कभी इस मार्ग में तो बनता नहीं। कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि हमारा प्रयत्न चलता है, हमारा प्रयत्न तो चलता है, ऐसा दिखने में आता है और हम प्रयास भी करते हैं, प्रयास करने में फर्क क्या हुआ वो बताओ, कब होता रहता है इसका मतलब क्या है? तो प्रयास नहीं होता है विकल्प होता है, प्रयास नहीं होता है किंतु मात्र विकल्प होता है, तो विकल्प कोई कार्यकारी नहीं। દેખાય એનો એટલો વાંધો નથી, કેમ કે સ્વપ્ર પ્રકાશ જ્ઞાનમાં જાણવા મળશે, પણ ગૌણ થાય છે કે મુખ્ય થાય છે? કોઈ દૂસરે કા દોષ દિખને મેં આ જાયગા, નહીં ચાહે તો ભી, હમારા હેતુ નહીં હૈ દેખને કા, લેકિન સહેજ પ્રસંગ પડને સે બાત તો સમજ મેં આઈ જાયગી, बात तो समझ में आ ही जाती है कि वो क्या करता है, मायाचार करता है या उत्कट क्रोध करता है या कोई भी प्रसंग पड़ता है या लोभ करता है या मान चढ़ता है, मान से बात करता है, अभिमान से, बात तो समझ में आ ही जाएगी। ज्ञान का तो काम ही जानने का है, तो ज्ञान जानेगा नहीं वो बात नहीं है, लेकिन मुख्य गौण करना ये इसकी टिक टैक है, कार्य पद्धति है, तो उसको गौण हो जाना चाहिए। સ્મરણ બતાતા। अल्प आरंभ ये अभी बात चली कि हमें हमारा जीवन एकदम सादगी से जीना है, वो अल्प आरंभ है। जो भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति में अल्प परिग्रह, ममत्व तीव्र होने से परिग्रह, ममता है वही परिग्रह है। ज्यादा चीज आ जाए संयोग में वो परिग्रह की बात नहीं है, ममत्व अल्प हो जाए है वो तो प्रारब्ध अनुसार है। जिसको भी जितना संयोग है वो तो प्रारब्ध अनुसार है, उसका बढ़ना घटना आना जाना सब प्रारब्ध अनुसार है। लेकिन हमारे परिणाम ममत्व के जितने होते हैं वही परिग्रह है, ममता परिग्रह वो अल्प होना चाहिए, ममत्व अल्प होना चाहिए। इत्यादि मल मिटाने के साधन है। देखो ये क्या है, मल मिटाने के साधन है। मल अगर घटेगा तो ही ज्ञान यथार्थ रूप से काम करेगा। दर्शन का प्रभाव से ज्ञान है वो सही रूप से काम नहीं करता, समझता है तो भी उसकी चलती नहीं है, समझ के ये समझ के चलती नहीं है, वो मल की चलती है, मिथ्यात्व की दर्शन मोह की चलती है ज्यादा। ज्ञानी पुरुष की अत्यंत भक्ति विक्षेप मटने का साधन है। ये बहुत सरल उपाय दिया है कि तुमको कषाय रस तीव्र होता है, एक बहुत सरल उपाय है, अत्यंत भक्ति में आ जाओ, अल्प भक्ति में मत रहो। क्यों? कि अल्प भक्ति वाले को बात समझ में नहीं आई कि इससे मेरा अनंत उपकार होता है। ज्ञानी पुरुष से उपकार कितना होता है? अनंत होता है, क्योंकि अनंत जन्म मरण का नाश का वो निमित्त है, तो उसको उपकार बुद्धि भी अनंत आनी चाहिए। जब तो बात बैलेंस होती है, व्याजिब होती है। अब अल्प भक्ति आते है इसका बात के उसको ज्ञानी पुरुष का निमित्त तो समझ में नहीं आया। अत्यंत भक्ति आने से सब परिणाम की चिकाश टूट जाएगी। अत्यंत भक्ति होने से क्रोध मान माया लोभ जो भी है सब परिणाम की चिकाश है वो चली जाएगी, आसक्ति की चिकाश भी हर जगह से चली जाएगी। ये बहुत सुगम और श्रेष्ठ साधन बार बार कृपालु देव इस बात पर ध्यान दिलाते हैं। तो उस तरह से कल्याण में प्रतिबंधक कारण कैसे होते हैं और इसका इलाज क्या होता है, ये इसी एक पैराग्राफ में बहुत सुंदर रूप से ये बात चली है। ये दूसरा पोस्ट कार्ड यहाँ पूरा होता है, तीसरा पोस्ट कार्ड का स्वाध्याय कल के स्वाध्याय में लेंगे। हाँ ठीक है, हाँ भूल जाओ तो याद देव रहे।